नमस्कार दोस्तों, शुभ संध्या। आज के स्पोर्ट्स कैन में मैं हूं आपके साथ विनय सक्सेना, और आज के संस्करण में तमाम खेल खबरों पर चर्चा करने के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं खेल विशेषज्ञ गौस मोहम्मद जी। गौस जी नमस्कार, आपका स्टूडियो में स्वागत है।
बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार सबको।
पहले चर्चा करते हैं मुख्य समाचारों की। डूरंड कप के 133वें सत्र के क्वार्टर फाइनल मुकाबलों की घोषणा आज की गई। ग्रेट ब्रिटेन के ट्रैप निशानेबाज पीटर विल्सन ने भारतीय टीम को कोचिंग देने में रुचि दिखाई। भारतीय महिला ए क्रिकेट टीम ने आज तीसरे और अंतिम एक दिवसीय मैच में ऑस्ट्रेलिया की ए टीम को 171 रन से हराया। और सिनसिनाटी ओपन टूर्नामेंट 2024 में स्वैटेक और अरियाना सबलिंका के बीच पहला सेमीफाइनल खेला जा रहा है। डूरंड कप के 133वें सत्र के क्वार्टर फाइनल मुकाबलों की घोषणा आज की गई, जिसमें सॉल्टलेक स्टेडियम में बेंगलुरु एफसी और केरला ब्लास्टर्स के बीच मैच शुक्रवार को खेला जाएगा। मोहन बगान की टीम का मुकाबला पंजाब एफसी से होगा, ये मैच जमशेदपुर में होगा। ईस्ट बंगाल की टीम भी क्वार्टर फाइनल में जगह बनाने में सफल रही है। क्वार्टर फाइनल में उनका मुकाबला शिलांग लाजोंग एफसी के साथ होगा। ये मैच सॉल्टलेक स्टेडियम के बजाय शिलांग में आयोजित किया जाएगा। नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड फुटबॉल क्लब का मुकाबला भारतीय सेना से होगा। भारत की अंडर 20 पुरुष फुटबॉल टीम सोमवार को भूटान के खिलाफ सैफ अंडर 20 चैंपियनशिप के अपने पहले ग्रुप बी मैच में खेलेगी, जो एएनएफए कॉम्प्लेक्स के कृत्रिम मैदान पर खेला जाएगा। वर्तमान में भारत की अंडर 20 टीम में शामिल अधिकांश लड़के दो साल पहले सैफ अंडर 17 चैंपियनशिप में भूटान के खिलाफ खेल चुके हैं। 63वां सुब्रतो कप सब जूनियर फुटबॉल टूर्नामेंट कल से बेंगलुरू के विभिन्न स्थानों पर शुरू होगा। प्रतियोगिता में दो विदेशी टीमों सहित विभिन्न राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों और शैक्षिक संगठनों का प्रतिनिधित्व करने वाली 36 टीमें शीर्ष सम्मान के लिए आपस में खेलेंगी। ये पहली बार है कि टूर्नामेंट में सामान्य अंडर 14 वर्ग से अंडर 15 वर्ग को शामिल किया गया है। क्वार्टर फाइनल 25 अगस्त को निर्धारित है और सेमीफाइनल 26 अगस्त को खेला जाएगा। टूर्नामेंट का फाइनल 28 अगस्त को एएससी सेंटर में खेला जाएगा। क्वार्टर फाइनल मुकाबले डूरंड के निर्धारित हो गए, तो क्या लग रहा है कि कौन कौन सी टीमों के किसके खिलाफ पलड़े भारी हैं?
देखिए, डूरंड कप जैसे कि आप जानते हैं कि अगर हम पूरी नजर डालें तो तीसरा सबसे पुराना फुटबॉल टूर्नामेंट है।
जी बिल्कुल,
और 133वां होना तो आप इस पर गौर कर सकते हैं। तो ये 2016 तक तो दिल्ली में ही होता था, और इसकी एक परंपरा थी कि महामहिम राष्ट्रपति मुख्य अतिथि फाइनल में होते थे, और शुरू के दौर में डॉ राजेंद्र प्रसाद या बाकी के जितने भी प्रेसिडेंट आते रहे उनकी पसंद होती थी डूरंड कप। तो जहां तक क्वार्टर फाइनल की बात है, बेंगलुरु एफसी या ईस्ट बंगाल, मोहन बगान, शिलांग, ये सब टीमें जो है नेक टू नेक फाइट करने में माहिर है। तो यहां देखना होगा, क्योंकि जैसे आज का एक मैच था
यूरोप हो गया
मोहन बगान का, वो नहीं हो पाया, तो किसी वजह से नहीं हो पाए। लेकिन वो मैच एक ऐसा होता है, अगर कोलकाता में खेला जा रहा है तो ये समझ लीजिए वो फाइनल से ज्यादा बेहतर है, बड़ा क्राउड आता है। तो यहां पे अभी जो है कोकराझार और शिलांग में और कोलकाता में ये मैच हो रहे हैं, पहले एक ही जगह होते थे। तो ये सब चीजें इसमें करी गई हैं। इससे पहले एक और मैं जिक्र करूंगा, जैसे आपने अंडर 14 सुब्रतो कप का बताया, सुब्रतो कप दिल्ली में अंडर 14 इस बार नहीं होकर बैंगलोर में हो रहा है
जी।
अभी तक अंडर 17 गर्ल्स सुब्रतो दिल्ली में ही हुआ था, उसके बाद अंडर 17 बॉयज होगा, शायद वो दिल्ली में होगा। तो ये एक जो नई परंपरा शुरू हुई है, डूरंड कप जो है वो चारों तरफ जा रहा है, कोलकाता में हुआ, गोवा में।
ये परंपरा तो अच्छी है ना?
हाँ, अच्छी है, लेकिन क्या है कि दिल्ली से जाने के बाद दिल्ली में एक कैपिटल, भारत की कैपिटल में एक ऐसा टूर्नामेंट होता था जिसकी वजह से फुटबॉल प्रेमी जुड़े हुए थे। आज कोई भी फुटबॉल टूर्नामेंट दिल्ली में नहीं है, ऐसा कोई एक भी टीम टूर्नामेंट नहीं जो अट्रैक्ट कर सके। तो उसका कारण क्या होता जा रहा है कि जो फुटबॉल के प्रेमी थे वो क्रिकेट की तरफ चले गए, आईपीएल की तरफ चले गए, और वहां पे जबरदस्त फरोशा कोटला जो अरुण जेटली स्टेडियम है वहां पे जाते हैं। रही बात आपने जैसे बताया, इसमें मोहन बगान, ईस्ट बगान के अलावा बेंगलुरु, मॉडर्न स्पोर्टिंग, केरला ब्लास्टर, ये टीम ऐसी हैं कि पर्टिकुलर डे में बहुत बेहतरीन खेलती है और अभी ईस्ट बंगाल और मोहन बगान जिनकी परंपरा रही है कम से कम 6-7 बार ईस्ट बंगाल जीत चुकी है, 2-3 बार मोहन बगान भी जीती है, पीएससीबी भी जीती है, बीएसएफ भी जीती है। एक दौर था जिसके अंदर इंस्टीट्यूशनल टीमें एयर इंडिया भी जीती है, ये टीमें होती थी। अब इसमें कहां कोई अगर हम देखें इंडियन आर्मी के अलावा या असम राइफल के अलावा
और कोई इंस्टीट्यूशनल टीम है
नहीं है जो कि होना चाहिए। आप ये देखिए अगर आज हॉकी हम कांस्य पदक ओलंपिक में लाए हैं तो यहां हॉकी में कोई ओपन टूर्नामेंट नहीं होता, ड्यूरेंट या आईएफए शील्ड या प्रेसिडेंट कप इस तरह नहीं होता, इंस्टीट्यूशनल हॉकी होती है। सारे विभागों की अच्छी टीम है, सबको अच्छी तरह नौकरी मिलती है और वो लोग खेलते हैं और उन इंस्टीट्यूशनल लीग में जब हॉकी ज्यादा खेली जाती है तो टैलेंट सामने दिखता है। तो ये इंस्टीट्यूशनल लीग की वजह से ये था कि बीएसएफ, पीएसएबी, ओएनजीसी, एयर इंडिया ये वो टीमें थी जो तुरंत जीती भी हैं और इसमें से जो टैलेंट उभर के आता था वो ईस्ट बंगाल, मोहन बगान या सलवांकर में जाता था, डेम्पो में जाता था। ये
अब बात करते हैं निशानेबाजी की। ग्रेट ब्रिटेन के महान डबल ट्रैप निशानेबाज पीटर विल्सन ने भारतीय टीम को कोचिंग देने में रुचि दिखाई है और उनका लक्ष्य 2028 लॉस एंजलिस खेलों के लिए निशानेबाजों को प्रशिक्षित करना है। विल्सन ने कहा है कि उन्होंने अपना बायोडाटा भारतीय राष्ट्रीय राइफल संघ एनआरएआई को भेज दिया है और अब उनके जवाब का इंतजार है। सर, पीटर विल्सन का आना निशानेबाजों के लिए कितना फायदेमंद होगा क्योंकि उन्होंने ब्रिटेन के ओलंपिक में शूटिंग के अकाल को खत्म करके मेडल दिलवाया है।
बेशक जो मेरे ख्याल से कई सालों से नहीं आ रहा था,
37 सालों से नहीं आ रहा था,
वो उन्होंने करके दिखाया। और रही बात जिस तरह शूटिंग में हमारे शूटर्स ने परफॉर्मेंस दी है, 2 मेडल जीते हैं और ज्यादा मेडल्स हो सकते थे, पर मेरे ख्याल से अगर ये विल्सन आते हैं उनका आना ठीक होगा, पर ये देखना होगा कि उनकी सेवाएं जब
ली जाएंगी
तो उनको पूरा ओपन हैंड कि चलिए आप क्या है, आप जो प्रोग्राम करेंगे हम अकॉर्डिंग टू योर प्लान विल गो। वो सबसे बड़ी चीज है, इंटरफेयर जो होता है प्रोफेशनल लोग बर्दाश्त नहीं करते। और आप ये देखिए कि शूटिंग में भारत ने और भी शूटर थे तो बहुत करीबी हारे, यहां पर देखा विल्सन ने कि ये जगह बहुत अच्छी है, यहां अगर मैं अपना टैलेंट जो है कोचिंग का, अगर इंग्लैंड को एक गोल्ड काफी साल बाद जिताया मैंने तो उसने उम्मीदें देखी आशा की किरण भारतीय शूटर्स में कि इसमें एक नहीं 6-6 ऐसे हैं जो गोल्ड ला सकते हैं। इसी कारण से उन्होंने ईमेल किया, अपनी विलिंगनेस बताई है और अगर वो आते हैं तो मेरे ख्याल से ये एक बहुत बहुत अच्छी
शूटिंग के लिए बहुत अच्छा संकेत होगा,
जबरदस्त संकेत होगा।
अब बात करते हैं क्रिकेट की। युवा लेग स्पिनर प्रिया मिश्रा के 5 विकेट और तेजल हसबिनस और राघवी बिष्ट के अर्धशतक से भारत की ए टीम ने आज तीसरे और अंतिम एक दिवसीय मैच में ऑस्ट्रेलिया की ए टीम को 171 रन से हरा दिया। तेजल की 66 गेंद में 50 और राघवी की 64 गेंद में 53 रन की पारी की बदौलत भारतीय टीम ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 9 विकेट पर 243 रन बनाए। दिल्ली की 20 साल की प्रिया ने इसके बाद 14 रन देकर 5 विकेट चटकाते हुए ऑस्ट्रेलिया ए को सिर्फ 72 रन पर ढेर करके भारत को दौरे की पहली जीत दिलाई। कप्तान मीनू मनी ने भी 4 रन देकर 2 विकेट हासिल किए। पूर्व चैंपियन भारत और अगले साल मलेशिया में 18 जनवरी से 2 फरवरी तक होने वाले आईसीसी अंडर 19 महिला टी20 विश्व कप में अपना अभियान वेस्टइंडीज के साथ मैच खेलकर शुरू करेगा। भारत को ग्रुप ए में मेजबान मलेशिया, वेस्टइंडीज और श्रीलंका के साथ जगह मिली है। भारत ने पिछले साल दक्षिण अफ्रीका में फाइनल में इंग्लैंड को हराकर पहले टूर्नामेंट का खिताब जीता था। इंग्लैंड, आयरलैंड, पाकिस्तान और अमरीका को ग्रुप बी में रखा गया है जबकि ग्रुप सी में दक्षिण अफ्रीका, न्यूजीलैंड, समोआ और अफ्रीका से एक क्वालिफायर को जगह मिली है। ग्रुप डी में ऑस्ट्रेलिया, बांग्लादेश, स्कॉटलैंड और एशिया से एक क्वालिफायर को रखा गया है। भारतीय महिला क्रिकेट ए टीम ने ऑस्ट्रेलिया को हरा दिया। जिस तरह से पुरुषों में टैलेंट उभर के आ रहा है, क्या इसे हम ये माने कि इस तरह से महिलाओं में भी क्रिकेट का टैलेंट उभर के आ रहा है जो भारत के लिए, महिला क्रिकेट के लिए, भविष्य के लिए एक अच्छा संकेत है?
विनय जी, बिल्कुल ठीक आपने मेंशन किया, क्योंकि देखिए ए टीम का खेलना इस बात का संकेत है कि जो मेन टीम है उसमें अगर सबको चांस नहीं मिल पा रहा तो भारत की ए टीम ऑस्ट्रेलिया दौरे पे खेल रही है। इसमें और अगर हम टैलेंट देखेंगे। आप देखिए राघवी ने अच्छा किया है, किरण नवगिरी ने अच्छा किया, तेजल संजय ने भी अच्छा किया है, उन्होंने बैटिंग अच्छी की है, संजीव सजना ने भी अच्छा किया है, और इसके अलावा प्रिया मिश्रा वो तो कमाल ही कर दिया। यानी 14 रन देकर 5 खिलाड़ी आउट करने कोई छोटी बात नहीं है। उसके अलावा उससे मणि भी, उसने भी 4 रन देकर 2 विकेट लिए, तो टैलेंट यहां भी बहुत अच्छा है। और ऑस्ट्रेलिया के अंदर खेल रहे हैं, ब्रिस्बेन में खेल रहे हैं, जो एक बात होती है, कई लोग बोलते हैं हमें एक्सपोजर नहीं मिला, ये तो एक्सपोजर मिल रहा है। अगर आप इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में, साउथ अफ्रीका में क्रिकेट अच्छा खेलते हैं, इसका मायने ये है आपके अंदर डेप्थ है, गहराई है आपके क्रिकेट में, तो भारतीय ए टीम में एक साथ 4-5 खिलाड़ी उभर के आए हैं।
तो इसको हम इस तरह से भी देख सकते हैं कि जैसे पुरुषों में एक बेंच स्ट्रेंथ तैयार हो रही है, महिलाओं में भी एक बेंच स्ट्रेंथ तैयार हो रही है।
बेशक कई लोगों का जो पुराने महारथी रहे हैं वो ये कहते हैं कि एक पोजीशन पे अगर आपके पास 3-3 ऑप्शन है तो आपकी टीम तरक्की करेगी, कुछ न कुछ करके आएगी। तो यहाँ पे अब जो ऑप्शन आएंगे, कंपटीशन होगा, जो मेन टीम में खिलाड़ी हैं वो समझ गए कि सावधानी हटी दुर्घटना घटी, इसलिए बेटर परफॉर्म करते रहिए।
जी बिल्कुल बिल्कुल। दिल्ली प्रीमियर लीग में आज डबल हेडर का दिन है। आज पहला मैच वेस्ट दिल्ली लॉयंस और नॉर्थ दिल्ली स्ट्राइकर्स के बीच खेला जा रहा है। एक अन्य मैच में ईस्ट दिल्ली राइडर्स ने सेंट्रल दिल्ली किंग्स को 10 विकेट से हरा दिया। और अब बात करते हैं टेनिस की। टेनिस में आज अमेरिका में विश्व की नंबर एक महिला और पुरुष खिलाड़ी इगा स्वायटेक और जैनिक सिनर्स सिनसिनाती ओपन टूर्नामेंट 2024 के सेमीफाइनल मुकाबले में चुनौती पेश करेंगे। स्वायटेक और अरियाना सबलेंका के बीच पहला सेमीफाइनल खेला जा रहा है। इटली के यानिक सिनर का सामना जर्मनी के अलेक्जेंडर जोरेफ से होगा। बेंगलुरू के 16 साल के प्रतिभाशाली ड्राइवर अभय मोहन ने आज संपन्न हुए एमएमएससी इंडियन नेशनल कार रेसिंग चैंपियनशिप के चौथे और अंतिम राउंड में लगातार 10 जीतकर प्रतिष्ठित फार्मूला 1600 नेशनल चैंपियनशिप जीत ली। ये उनका पहला राष्ट्रीय खिताब भी है। मुंबई के दो ड्राइवर जहान कमसारियाट और राज बखरू चैंपियनशिप में दूसरे और तीसरे स्थान पर रहे। आरएनडे गर्ल्स एमएच्योर गोल्फ चैंपियनशिप के सेमीफाइनल में पहुंचने वाली पहली भारतीय मन्नत बरार को अंतिम चार के मुकाबले में पोलैंड की मैटिल्डा क्रोजनिस्का के खिलाफ हार का सामना करना पड़ा। भारतीय गोल्फ यूनियन की मेरिट सूची में शीर्ष रैंकिंग वाली खिलाड़ी मन्नत इस टूर्नामेंट में अंतिम चार में जगह बनाने में देश की पहली गोल्फर हैं। भारत के अनिर्बान लाहिड़ी लिव गोल्फ ग्रीन बियर टूर्नामेंट में दूसरे दौर में शनिवार को 1 ओवर 71 का निराशाजनक कार्ड खेलने के बाद संयुक्त रूप से 49वें स्थान पर खिसक गए। लाहिड़ी 54 खिलाड़ियों की इस प्रतियोगिता में शुरुआती दौर के बाद संयुक्त रूप से 38वें स्थान पर थे। ओल्ड वाइट कोर्स में आसान परिस्थितियों के बावजूद वो दूसरे दौर में एक बर्डी के मुकाबले 2 बोगी कर बैठे। दुनिया के सबसे पुराने क्रिकेट खेलने वाले देश ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड टेस्ट क्रिकेट के 150 साल पूरा होने पर एक दूसरे के साथ मैच खेलेंगे। ये एकमात्र मैच 2027 में मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड के ऐतिहासिक मैदान में खेला जाएगा। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड पीसीबी ने घोषणा की है कि आगामी 2024-25 सत्र में सभी लाल गेंद वाले घरेलू मैचों के लिए ड्यूक गेंदों का इस्तेमाल किया जाएगा, जबकि विश्व टेस्ट चैंपियनशिप में 7 मैच कुकुबरा गेंदों से खेले जाएंगे। और श्रोताओं, अब समय हो चला है आपसे विदा लेने का, क्योंकि समय इस बात की इजाजत नहीं दे रहा है हमें कि हम और आगे इस कार्यक्रम को बढ़ा सकें। आपसे कल फिर मिलेंगे और उन ताजा खेल खबरों पर चर्चा होगी। गौस जी, आप हमारे साथ स्टूडियो में आए और आपने तमाम खेल खबरों पर हमसे चर्चा की, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। श्रोताओं, मैं विनय सक्सेना पूरी स्पोर्ट्स चैन की टीम के साथ आपसे अनुमति लेता हूं। नमस्कार।